अब सूरत अल अनाम को अगर देखें तो सूरत अल अनाम का आगाज है अलहम्द से। कुरान पाक में पांच सूरतें अलहम्द के लफ्ज़ से शुरू होती हैं, उसमें से ये दूसरी सूरत है। कितने पारे हुए? 7.5। आलमोस्ट रुब से आगे हम थोड़ा सा। आलमोस्ट हर 7.5 पारों के बाद एक सूरत अलहम्द से शुरू हो रही है। अभी याद देख रहे हैं तो अगला एक बता देती हूँ। सूरत कौन सी पढ़ते हैं जुम्मे को? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल अला अब्दिहिल किताब। ठीक है, तो सूरत कहफ हर 15-15 पारों के बाद देखेंगे। और अलहम्द से क्यों शुरू हुई है, थोड़ा सा इस सूरत के मजामीन पे नज़र डालें तो आपको समझ आएगा कि इस सूरत का बुनियादी थीम रहमत है, नरमी। और इससे अगली सूरत जो आएगी ना अराफ, उसमें सख्ती है, उसमें पकड़ है, इसमें कतब अला नफ्स ही रहमा। अभी आने वाला इस बारे में तौहीद शिर्क के इलाज की बात है। सबूत के तौर पर दो किस्म की आयात का तذکرہ, आयाते मशहूदा, मुश्किल लफ्ज़ों पे ना घबराइएगा, खुद ही बोल दूंगी बाद में। आयाते मशहूदा, शहीदा से क्या होता है लफ्ज़? जो देखा जा सके, यानी कायनात में नजर आने वाली चीजें, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे, यही है बस। दूसरी है आयाते मसमूआ, समिया से सुनने वाली, सुनने वाली आयात। आपको बीच में एक दो शुरू में मैं हाईलाइट करा दूंगी, फिर आप खुद करेंगे बाद में। यानी कायनात में नजर आने वाली चीजों को देखकर मार्फते इलाही हासिल करो, और ना नजर आने वाली को देखकर करो। और पूरी सूरत में किसी भी कौम पर अजाब की बात नहीं है, ये एक पेयर है। अगली सूरत अल अराफ है ना, उसमें कौमों पे अजाबों की बातें हैं, इसमें रहमत की बात है। सूरत मायदा में अल्लाह तआला की कौन सी सिफत देखी थी हमने पीछे कल? अदल। तभी तो इस्लामिक सजाएं और बर्बारिक और ये वो सारी पे बात हुई, उधर अदल था, इसमें रहमा है। और कुरैश के मुतालबे थे बहुत सारे, उनका तذکرہ भी हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ आप इसका तर्जमा ही पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, बिगड़े हुए बच्चे, नाफरमान बच्चे, इनको बात नहीं माननी, इनको हिदायत की भी भूख ही नहीं लगी है। अल्लाह ने इधर बता दिया कि उनके बार बार के मुतालबों के बावजूद उनको मैंने अजाब नहीं दिया, ये मेरी रहमत है। क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है कि जब किसी कौम पर कोई मौजज़ा आ जाए फिर ना माने तो फिर उनकी पकड़ बहुत होती है। इसके लिए अपने लिए एक जुमला लिख लें, बास दफ़ा हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती या हमें मांगी हुई चीज़ नहीं मिलती, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एहसान होता है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला आपके मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ कर दे कि जिसके लिए आप और मैं अपने आप को मतलब डिजर्व समझते हैं, तो बाद में हम खुद ही पकड़े जाएंगे। फिर इसी तरह से याद रखिए कि जू के इस बारे में मार्फत की बात करें ना, सूरत अल अनाम में आपको मार्फत इलाही की ये दो मुख्तलिफ चीज़ों को सामने है। एक वो होती है जो कायनात को देख कर आप अल्लाह की बात मानते हैं, और एक वो है जो आप इबादात के जरिए नमाज में खड़े होकर कुछ और चीज़ों के साथ करते हैं। और इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जिसका इस वक्त ना मौका है ना वक्त है। आइए शुरू करते हैं और दुआ कीजिए कि ज़िंदगी में कभी इस सूरत को तफसील से भी पढ़ने का मौका मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल-अर्द वल-अर्द वजालज़ुलुमाति वन-नूर। पहला रुकू है आयत नंबर 1 से 10, सिफ़ात बारी ताला का बयान है। और आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला को पहचानने का एक खूबसूरत सा तरीका आपको मुझे इसमें बताया जा रहा है और हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे हमें अपने आगे झुकने की दावत देता है। और इस कायनात पे ही गौर कर लो तो तुम्हें मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। हकीकत यह है कि कुरान पढ़ते हुए भी अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती जिनको नहीं मिलनी होती, और कुछ को सिर्फ कायनात को देखकर भी अल्लाह से मोहब्बत होती है। देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों और नूर को बनाया। फिर भी काफिर लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुअय्यन किया और दूसरा मुअय्यन वक्त खास अल्लाह ही के नज़दीक है, फिर भी तुम शक रखते हो। और वही है माबूद बरहक आसमानों में भी और ज़मीन में भी, और वह तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे ज़ाहिर अहवाल को भी जानता है, और जो कुछ तुम अमल करते हो उसको भी जानता है। और इनके पास कोई निशानी भी इनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वो इसे एराज करते हैं। उन्होंने इस सच्ची किताब को भी झुठलाया जबकि वो इनके पास पहुंची। बस जल्द ही इनको खबर मिल जाएगी इस चीज की जिसके साथ ये लोग मजाक किया करते थे। ये जो निशानियां नजर आ रही थी ये आयतें मशहूद थी। दिन रात सूरज चांद सितारों को देखते हैं, नहीं मानते। कुरान समझ आता है, मसमू आयात है, नहीं मानते। यानी ना इनको कुरान पढ़ के हिदायत मिलती है, ना इनको कायनात को देख कर हिदायत मिलती है। अब इनको माजी की कुछ तारीख दिखाओ, पिछले लोगों के साथ क्या हुआ? क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं, जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, और हमने इन पर खूब बारिशें बरसाई, और हमने इनके नीचे नहरें जारी की, फिर हमने इनको इनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला, और इनके बाद दूसरी जमातों को पैदा किया। हाईलाइट कर लें इसको, दलील है कि बंदा अपने गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया जाता है। और अगर हम कागज़ पर लिखा हुआ कोई नविश्ता यानी तहरीर आप पर नाजिल फरमाते, फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है। और ये लोग यूं कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम फरिश्ता उतार भी भेजते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर इनको जरा भी मोहलत ना दी जाती। और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज करते तो हम इसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फेल से इन पर वही शुबा होता जो अभी तक इनको पड़ा हुआ है, इश्काल यानी मुशुबा, डाउट पड़ता। और वाकई आपसे पहले जो पैगंबर भी हुए इनके साथ भी मजाक किया गया, फिर जिन लोगों ने इनसे मजाक किया था इनको इस अजाब ने आ घेरा जिसका ये मजाक उड़ाते थे। तो ये हैं जी दो किस्म की आयतें, आयाते मशहूद और आयाते मसमू। कुछ लोगों को कुरान सुनकर हिदायत मिल जाती है, और कुछ को कुरान के बजाय कायनात में फैली हुई निशानियों को देखकर हिदायत मिलती है। सवाल लिखिए, कैसे पता चलता है कि मैं दीनदार हूं कि नहीं? आपके जहन में किसी भी दीनदार शख्स का क्या तसव्वुर आता है? एक खास गेटअप, एक खुलिया, कुछ इबादात, जी ये सब भी है, लेकिन असल दीनदारी क्या है? एक जुमला लिखिएगा। असल दीनदारी दिल की नरमी है। दीनदार वो है जिसका दिल नरम हो जाए, क्योंकि दीन बंदे को गलाता है, गलाता है, गलाता है, और बिल आखिर बंदा नरम दिल नरम जुबान बन जाता है। जब जुबान में कठोरपन होता है ना, और तबलीग के नाम पर आप ताने दे रहे होते हैं और धमकियां दे रहे होते हैं और झुटला रहे होते हैं लोगों को, तो समझ लीजिए कि आप तो इस ख्याल में मगन हैं कि आप बहुत नेक हैं और आपका मुकाबिल बहुत गुनाहगार है। तो ऐसे लोग अल्लाह आपको मुझे ना बनाए, अपने आप को चेक किया करें, खास तौर पे जब आप अपने छोटों को यानी अपने बच्चों को और इसी तरह से अपने जो अंडर आपके लोग हैं उनको दीन की दावत दे रही होती हैं। अल्लाह करे कि मैं और आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को दीन के तकाजों के मुताबिक सही मानों में दीनदार बना सकें। फिर इस हिस्से से हमें एक बात पता चली कि पिछली कौमें अपने कौल से किताब को झुटला कर अजाब की हकदार हुई, आज हम अमल से किताब को झुटला कर अजाब के मुस्तहिक बनते जा रहे हैं। इनकार तो नहीं करता आज कोई मुसलमान कुरान का, लेकिन अमल नहीं करता। क्या पता चला? फेथ इन एक्शन। अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करनी है, अल्लाह ताला की सिफात को पहचान कर शिर्क से बचना है, कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हर खैर और शर का मालिक है, इस ईमान के साथ नेकियों में इखलास लाना है कि अल्लाह ताला हर अमल से बाखबर है। रुकू नंबर 2, 11 से 20, 11 to 20। अल्लाह ताला गनी यानी दौलत वाला और बातिल माबूद मोहताज हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो गनी को छोड़कर मोहताजों से मांगते हैं। कुल सीरु फिल अर्दि सुम्मा ज़ुरू, आप फरमा दीजिए कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। आप कहिए कि जो कुछ आसमानों और जमीन में मौजूद है वो सब किसकी मलकियत है? आप कह दीजिए सब अल्लाह ही की मलकियत है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। इस आयत को हाईलाइट करें। कतबाला नफ्सिहिर रहमा। जब बंदे को मार्फत होती है ना अल्लाह की, तो वो खाम खाई उम्मीद लगा लेता है, देखना मैंने बच जाना है, देखना अल्लाह ने मुझे वहां बड़ा कुछ देना है। उसने दुनिया में भी दिया था ना, उसने दुनिया में भी तो बगैर किसी किए काम के मुझे इतना कुछ दिया, वो वहां भी देगा। तो ये कतब अला नफ्सी रहमा, ये अल्लाह की रहमत है, और उसने तो अर्श पे लिखा हुआ है कतब अला नफ्सी रहमा। हम पता नहीं क्यों अल्लाह को इस गजब और गुस्से को डालते हैं। नहीं, नए लोगों को मत डराइए, आप डरिए जो इतने सालों से सुन सुन आकर नहीं समझ रहे, नए लोग तो बेचारे अभी डरते हुए कदमों से आ रहे हैं, उनको थाम लीजिए, उनको पकड़ लीजिए। हाँ, तुमको अल्लाह कयामत के रोज जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला, बस वो ईमान नहीं लाएंगे, और अल्लाह ही की मिल्क हैं वो सब कुछ जो रात में और दिन में रहती हैं, और वो ही बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। आप कहिए कि अल्लाह के सिवा जो कि आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, जो कि खाने को देता है और इसको कोई खाने को नहीं देता, और किसी को माबूद करार दे दूं, आप फरमा दीजिए कि मुझको ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं। अब देख रहे हैं कि अधूरे जुमले हैं, कैसे सोई भी फितरत को जगाया जा रहा है, क्योंकि मुशरिक की जो फितरत है ना वो मस्क होने लगती है। तो जरा से इस जुमले पे गौर कीजिएगा, आयत 14। आप कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा जो कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, जो के खाने को देता है और इसको कोई खाने को नहीं देता, और किसी को माबूद करार दूं, यानी अक्ल झंझोड़ी जा रही है। इसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्टाइल या थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, क्या उसको छोड़कर मैं इन मंगतों से मांगू, ये मुराद, और किसी को माबूद करार दूं। आप फरमा दीजिए कि मुझको ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं, और तू मुशरिकों में से हरगिज ना होना। आप कह दीजिए, आप नोट करें, बार बार नबी के जरिए कहलाया जा रहा है, क्योंकि नबी के सामने आके बदतमीजी कर रहे थे, सवाल जवाब करते थे, ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे हो गया, ये तो हमने कभी नहीं सुना, हमारे बड़ों ने तो ये कभी ना किया वगैरह। तो ये सारा उसी सिनेरियो में पैगाम आ रहा है। क्या कह दीजिए, इसको आप भी हाईलाइट कीजिए, इसमें एक बहुत अहम नुक्ता है अमल का। आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। जिस शख्स से उस रोज़ वो अजाब हटा दिया जाए तो इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और वो सरीह कामयाबी है। ये जुमला आप भी लिख लें, कभी कोई आपको वाकई मजबूर करे ना किसी गुनाह के काम पे, अल्लाह की नाफरमानी पे, ये देखो, ये सुनो, ये करो, ये बोलो, तो आप ये जुमला बोल दें कुरान का, मुझे अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उसकी पकड़ का डर है। और फिर अगली आयत तो कापी पे नहीं लिखनी, दिल पे लिखिए, बेहतरीन खूबसूरत आयत। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ, और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। सच अल्लाह के डाले से आती है और अल्लाह के कांटे से कटती है मुसीबत, बीमारी, दुख, परेशानी। और अगर तुझको अल्लाह कोई नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है और बरतर है, और वही बड़ी हिकमत वाला और बुरी खबर रखने वाला है। जिसको ये आयत समझ आ गई, यहाँ भी और सूरह ज़ुमर में भी आप पढ़ेंगे बिल्कुल यही अंदाज है, जिसको ये बात समझ आ गई वो मखलूक के डर, रोब, खौफ इनसे निकल जाएगा। हम सारा वक्त लोगों से डरते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, जब मार्फत रब्बी होती ना तो लोग आपके लिए ना छोटे छोटे होते होते बोने बन जाएंगे, छोटे छोटे मिनिएचर, वो हैंग मैन, मैं इससे क्यों डरूं, मैं इसको खुश करने के लिए अल्लाह को क्यों नाराज़ करूं। बस फिर आप वो शुरू हो गए मार्फत हक से एतराफ़ हक का सफ़र। आप कहिए कि सबसे बड़ी चीज़ गवाही देने के लिए कौन है, आप कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिस जिस को ये कुरान पहुंचे इन सबको डराऊं। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह ताला के साथ कुछ और भी माबूद हैं? आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए बस वो तो एक ही माबूद है, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। आप देखिए कि ये जो आयत है ना कि वही यमसस्कुल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ अला इल्ला हुआ, ये आयत दिल पे लिख लें, वही यमसस्कुल्लाहु बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसके बाद आपको हर नफ्स की चीज से और लोगों के खौफ से अल्लाह निजात देगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, यारिफूना हुक्मा यारिफूना बिनाहुम। पीछे सुनी थी ये बात बिल्कुल दूसरे पारे के शुरू में, किबले की तब्दीली की आयतों में ये आयत उतरी थी या दूसरी बार आ गई, कि ये अल्लाह के नबी को अपने बेटों से ज्यादा पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला बस वो ईमान न लाएंगे। खुद से एक सवाल करें, वो मुशरिक होते हुए भी अल्लाह के नबी को इतना पहचानते थे, क्या अच्छा हम अल्लाह के नबी को पहचानते हैं? हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे मर्द, कभी भी सीरा पड़ी है पूरी अल्लाह के नबी पे। ये सूरतें किस हालात में नाजिल हो रही है हमें पता है? कितना प्रेशर था अल्लाह के नबी पे सूरत अल अनाम के नजूल के मौके पे। अल्लाह अकबर कबीरा। नियत कीजिए कि हमने अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में जानना है। ईमान से मुतल्लिक दो आयात इस रुकू में, 12 अल अनाम, कतब अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पर भारी है। अनाम 20, मोमिन अल्लाह की रहमत के साए में होता है और अल्लाह के नबी को ऐसे पहचानता है जैसे के पहचानने का हक है। देखिए माँ अपने बच्चे के बारे में कितनी ज़्यादा कॉन्शियस होती है। आप में जो माएँ हैं, अल्लाह उनके बच्चों को सलामत रखे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, 3-4 बेटे हैं, क्या दरवाज़ा खोलने के अंदाज से नहीं पता चलता कौन आ गया। चाबी रखने के अंदाज से पहचान जाती हैं माएँ, कदमों की चाप से जान जाती हैं छोटा आया कि बड़ा। तो हम कैसे कह सकते हैं क्या हम नबी को नहीं मानते? क्या वजह है कि हम सब मान कर भी कुछ नहीं मानते? सवाल लिखिए। जवाब, हक को मानने के लिए बड़ाई छोड़नी पड़ती है, अपनी बड़ाई, अन्ना का बुत तोड़ना पड़ता है, तकलीद का ढांचा गिराना पड़ता है और दुनियावी फायदों को तर्क करना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो इम्तिहान होता है वो क्या, खास से आम होना पड़ता है। VIP से निकलकर अपने आप को इकोनॉमी या एक आम अवामी क्लास में लाना पड़ता है। ये वक्ती फायदों के लिए अबदी घाटे का सौदा है। और जो लोग कमज़ोर नज़रों वाले होते हैं ना, जिनकी निगाह कमज़ोर है, जिनका विजन ही वीक है, वो ये सौदा कर नहीं पाते। इसके बरक्स बंदे मोमिन का ईमान क्या है? जो अल्लाह देना चाहे वो कोई रोक नहीं सकता और जो ना देना चाहे वो कोई दे नहीं सकता। तो करने का काम अमल का नुक्ता, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम करना है, वक्ती फ़ायदों के लिए ख़ुद को अबदी घाटे में नहीं डालना, दूसरों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, शहादते हक की जिम्मेदारी को निभाना है। अल्लाह आसान करे, दुआ मांगी अपने लिए, अल्लाह हमारे लिए ये सफ़र आसान कर दे। आगे रुकू नंबर 3, 21 से 30, 21 to 30, शिर्क करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। वमन असलमो में मन इफ्तरा अल्लाही कजीबा, और इससे बड़ा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह तला पर झूठ बोहतान बांधे या अल्लाह की आयत को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी ना होगी और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज़ हम तमाम मखलूक को जमा करेंगे। फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे, तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहाँ गए? फिर इनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की, अपने परवरदिगार की, हम मुशरिक न थे। देखिए वहाँ भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा देखो तो इन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीज़ों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए, यानी वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था। और इनमें से बस ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं और हमने इनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है इससे कि वो इसको समझें, और इनके कानों में डांट दे रखी है। और अगर ये लोग वो तमाम दलाइल देख भी लें तो भी इन पर कभी ईमान न लाएं, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वाम ख्वाह झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। और ये लोग इससे भी दूसरों को रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही आप को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये दोजख के पास खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयात को झूठा न बतलाएं और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएं। बल्कि जिस चीज़ को इससे कबल छुपाया करते थे वो इनके सामने आ गई है, और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया था, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। कैसी अल्लाह ने इंसान की कमज़ोरी का जिक्र किया है, जब मौका मिलता है तो कहते मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर बदल जाता है। और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है और हम जिंदा ना किए जाएंगे। और आप इस वक्त जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा, क्या ये अमरे वाकई नहीं, यानी हकीकत नहीं? वो कहेंगे बेशक कसम अपने रब की, अल्लाह फरमाएगा तो अब अपने कुफर के बस अजाब चखो। ये है वो मुकाम जिस पे आपको पीछे बताया कि क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक और अबू जहल का ईमान एक ही होगा। यानी अबू बकर का तो दुनिया में भी था ना, अबू जहल का ईमान भी बेहतरीन तरीके पे आ जाएगा क्योंकि सामने अल्लाह को देख रहा है। तुम्हारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि अपने ईमान को बढ़ाएं इस दुनिया में। दो आयात हैं इसमें, 25 अलनाम, उसका पैगाम क्या है कि जो कुरान को हिदायत के लिए सुनता है वही हिदायत पाता है, और आयत 27 क्यामत के मैदान में खड़ा करा कर तसव्वुर की निगाह से हमें एक हकीकत समझाई गई कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। वहां जाकर कह रहे हैं काश हमें एक दफा मौका मिले, लेकिन इट्स टू लेट। लिखिए हिदायत एक टाइम बाउंड चेक है, वक्त पे कैश ना करवाएं तो जाया हो जाता है। फेथ इन एक्शन, ऐसी बात नहीं कहनी जो कुरान और हदीस में नहीं। कुरान सुनने बैठे तो इसका हक अदा करें। कुरान पढ़ने से रुकना दूसरों को भी रोक देता है, ऐसा नहीं करना। यदि कभी पीछे होने भी लगे तो दूसरों में जाकर ऐलान ना कीजिए माइक पकड़कर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको दिल को भी वो जमा दे, दूसरों को भी हिदायत पे ही रखे। आगे रुकू नंबर 4, 31 से 41, 31 to 41। अल्लाह ताला फरमाइशी मोजज़े नहीं दिखाता। आप अभी ये रुकू सुनेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो कभी रेडियो पे फरमाइशी प्रोग्राम होता था ना, ये गाना सुना देना, अच्छा वो खबर सुना देना। कुछ लोग अल्लाह के दीन के साथ भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड शो करते हैं। कद खसीरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि जब वो मुअय्यन वक्त उन पर अचानक का पहुँचेगा कहेंगे हाय अफसोस हमारी उस कोताही पर जो इसके बारे में हुई। और हालत इनकी ये होगी कि वो अपने बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे, खूब सुन लो कि बुरी होगी वो शायद जिसको वो ला देंगे, और दुनियावी जिंदगानी तो कुछ भी नहीं सिवाय लहव लाएब के, और दर आखरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है, क्या तुम सोचते नहीं? हम खूब जानते हैं कि आपको इनकी बातें इनके अकवाल गमजदा करते हैं। नोट करें बशरी अंदाज है अल्लाह के नबी का, बातों से दुख होता है, तानों से दुख होता है, तनकीद से दुख होता है, लेकिन काम नहीं छोड़ना। याद रखिए आपके लिए एक बहुत ही लिटमस टेस्ट है, आप काम करें और तनकीद हो और आप छोड़ दें तो मान लीजिए कि आप अपने लिए कर रहे थे, और काम करें लोग अच्छा कहें बुरा कहें आपको पता है कि ये काम करना है और ये ठीक है करते रहें तो मान लीजिए कि असल में यही अल्लाह के लिए करते हैं आप। बस ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। देखिए बातों से अगर कोई बचा होता ना तो अल्लाह के नबी बच जाते, लोगों ने तो उन पे बातें छांटी। अगर आप पे कोई बात कर दे तो दिल मैला ना कीजिए। और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए हैं इनकी भी तकजीब की जा चुकी है, बस उन्होंने इस पर सब्र ही किया। इनकी तकजीब की गई और इनको तकलीफें पहुंचाई गईं, यहाँ तक कि हमारी इमदाद इनको पहुंची, और अल्लाह की बातों का कोई बदलने वाला नहीं। और आपके पास बास पैगंबरों की बास खबरें पहुंच चुकी हैं, और अगर आपको इनका मुंह फेरना यानी एराज करना बुरा लगता है गिरा गुजरता है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लाओ तो फिर कोई मौजजा ले आइए तो कर देखिए, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो इन सब को जमा कर देता, बस आप नादानों में से ना हो जाइए, वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं। इसको हाईलाइट करें, आज आप सुन रहे हैं ना, इंशाल्लाह एक दिन अमल भी होगा, और मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएगा, फिर सब अल्लाह ही की तरफ लाए जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई मुजजा क्यों नहीं नाजिल किया गया इनके रब की तरफ से, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मुजजा नाजिल फरमा दे, लेकिन इनमें से अक्सर बेखबर हैं। किस बात से? कि अल्लाह की रहमत है कि मुजजा नहीं आ रहा, वरना मौजज़ा आ जाए और बंदा न माने वो कौम हलाक कर दी जाती। अगली सूरत से ये सिलसिला शुरू होने वाला है कससुल अम्बिया का। और जितनी किस्म के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं और जितनी किस्म के परिंद जानवर हैं अपने दोनों बाजों से उड़ते हैं, इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं कि वो तुम्हारी तरह के गिरोह ना हो। हमने इस दफ्तर में, मुराद लोहे महफूज है, यानी हमने इस दफ्तर में कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे, और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते हैं वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे और गूंगे हो रहे हैं। और बात यह है कि अल्लाह जिसको बेराह कर दे और जिसको चाहे सीधी राह पे लगा दे। अल्लाह हमें सीधी राह पे ही रखे, क्योंकि जितना आप अल्लाह से हिदायत मांगते रहेंगे उतना हिदायत पे रहेंगे। आप कहिए कि अपना हाल तो बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ पड़े या तुम पर कयामत ही आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को भी पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? बल्कि खास इसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो इसको हटा भी दे, और जिनको तुम शरीक ठहराते हो इन सब को भूल जाओगे। आप देखिए कि मुश्किल वक्त में फितरत पे पड़े हुए पर्दे छट जाते हैं। इकरमा की मिसाल आगे हम पढ़ेंगे, कैसे उन्हें को अल्लाह ने ईमान उस वक्त नसीब किया जब मक्का फतह हो गया। तो याद रखिए इस पूरे रुकू बल्कि दो रुकू में बहसें ही बहसें। कभी कभी कुछ लोग स्टबन हो जाते हैं। अल्लाह के नबी का तो मामला फर्क था ना, वो तो सारा मुआशरा ही वैसा था। मेरे आपके लिए अमल की बात लिखी है कि बहसों में ना पड़िए। जो बहस के मोड में आ जाए ना वहीं स्टॉप, चाहे बच्चा चाहे बड़ा, चाहे शौहर चाहे बीवी, चाहे बहन चाहे शागिर्द चाहे मासी, कोई नॉन मुस्लिम, कोई राह चलता, वहां दावत को ब्रेक दे दीजिए, वहां अमर बिल मारूफ को स्टॉप कर दीजिए। जहां कोई बहस के मोड में आ जाए इस जुबान को बंद कीजिए। चलती ट्रेन को आप रोक सकते हैं? नहीं। इसी तरह बहस करने वाले को आप हिदायत की तरफ नहीं ला सकते, उसने कान बंद किए हुए हैं। तो नसीहत उस वक्त करें जब अगला ठंडा पड़ जाए, रिलैक्स्ड। और इसकी वजह से ना घर टूटेंगे ना लड़ाइयाँ होंगी, और बाहर की दुनिया में भी यही है। आपका बड़ा दिल चाहता है लोग हिदायत पे आए, इधर आए वो जाए उधर जाए, सुने कुरान इतना प्यारा है, सुने आपकी दोस्तों के लिए आपका दिल तड़पता है। कहिए जहां आपको 0.1% फीलर आ जाए ना कि ये अब आगे डिफेंसिव मोड में आ गए, स्टॉप, पुशी ना हो, आप अपना अमल दिखाइए। देखिए किसी को भूख नहीं है, आप कहते खाना खा लो, कहते नहीं खाना, एक से दो बार कहेंगे ना तो गुस्सा आएगा उसको कि मुझे भूख ही नहीं और आप मुझे मजबूर कर रही हैं। जिनको हिदायत की भूख नहीं होती वो नहीं खाते, करें क्या, भूख लगाएं। कोई छोटा सा जुमला, कोई 1 मिनट का कॉल, कोई एक ऐसी बात उनको, कोई एक छोटा सा जिम सुनवा दें। और खाने की मिसाल देखें, जिसको भूख नहीं है ना आप कहते अच्छा नहीं आप बैठिए मैं खा रही हूँ, मेरे से बस बैठ जाए, आप खाते हैं जो ढक्कन खोला और अंदर से आपकी बिरयानी, और वो भी हैदराबादी बिरयानी और कोरमा, और वो भी शाही कोरमा निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बैठे बैठे आपसे लुकमा लगाने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द स्टाइल, ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कीजिए। और जो बातें लोगों से सुननी पड़े तो उस पर याद रखिए अल्लाह की मदद सब्र वालों के साथ है। फेथ इन एक्शन, लोगों के साथ मिलकर टीम की सूरत में काम करें, ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अकेला करने में तारीफें एक ही होती हैं, ये बात सच है, इसीलिए लोगों को अकेला बड़ा अच्छा लगता है, पर उनको ये भूल जाता है कि फिर तनकीद भी उसे एक पे ही होगी। वन मैन शो कभी दुनिया में बड़ा काम नहीं कर सका, आजमा के देख लीजिए। वक्त के साथ वो सारी तहरीकें खत्म हो जाती हैं जो वन मैन शो की होती हैं। मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारिए, मौजज़ों की नहीं हिदायत की तौफीक मांगे। अब तौफीक मांगनी है, इल्म भी बहुत मिल गया, अब तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह हमें अमल करने वाला भी बना दे। आगे जी 42 से 50, अल्लाह ताला आफात झंझोड़ने के लिए भेजता है। बिलीव मी, दिल के कानों से सुनने वाली आयतें हैं ये जो क्लेमिटीज आती हैं, डाइवर्सिटीज और एडवर्सिटीज और फुलां फुलां, दुनिया में जो हो रहा है ना ऊपर नीचे जंगो जिदाल, ये क्यों आती हैं? अभी आपको जवाब मिलता है। वलकद अरसलना इला उमम, और हमने और उम्मतों की भी तरफ और जो आपसे पहले गुजर चुकी पैगंबर भेजे थे, बस हमने इनको तंग दस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो इजहारे एज कर सकें। तोड़ने के लिए आती हैं वही तकलीफें, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, कीमो होती है ना कैंसर पेशेंट की, उसके जिस्म का एक एक सेल टूट जाता है। बिल्कुल मुसीबतों में अल्लाह हमारी अकड़ तोड़ के रखता है। बस जब इनको हमारी सजा पहुंची थी तो उन्होंने आजिज़ी क्यों इख्तियार ना की, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने इनके अमाल को इनके ख्याल में आरास्ता कर दिया। फिर जब वो लोग इन चीज़ों को भूले रहे, इस आयत को हाईलाइट करिए, 44, ये अल्लाह का इंतकाम है बल्कि अल्लाह की एक मुस्तकिल सुन्नत है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब वो लोग इन चीज़ों को भूले रहे जिनकी इनको नसीहत की जाती थी, तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाजे कुशादा कर दिए। यहाँ तक कि जब इन चीज़ों पर जो कि इनको मिली थी वो खूब इतरा गए, तो हमने इनको अचानक पकड़ लिया, फिर तो वो बिल्कुल मायूस हो गए। फिर जालिम लोगों की जड़ कट गई। अब ज़रा जुमला देखिए, जड़ कट गई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूरी कोट कुरान में 4 दफ़ा, ये सेकंड टाइम है। पहली कहाँ पढ़ी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा में। यहाँ भी है कि अल्लाह का शुक्र जो तमाम आलिम का परवरदिगार है, खसकम जहाँ पाक इसको कहते हैं। दुनिया से किसी लड़ाकी फासिद जालिम कौम का मिटना अल्लाह की रहमत की दलील है। अल्लाह दुनिया में आज भी फसाद और शर फैलाने वालों को नीस्तो नाबूद करे। आप कहिए, ये बतलाओ, अगर अल्लाह तुम्हारी समात और बसारत बिल्कुल ले ले, इमेजिन कीजिए, सुनने से महरूम, देखने से महरूम, बहरे और अंधे कर दे, पॉसिबल है? एक कुन कहेगा और हो जाएगा। और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, यानी दिल ही बंद हो जाए, हार्ट अटैक। और इसी तरह से अगर अल्लाह ताला दिल के अंदर से हिदायत की तौफीक छीन ले, स्टैम्प्ड हार्ट, तो अल्लाह के सिवा और कोई माबूद है जो तुमको फिर दे दे? जवाब दीजिए, बोले ऊंची बात से नहीं। आप देखिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज करते हैं, यानी इतने अकड़े हुए। एक से एक खूबसूरत अंदाज इनको दिखाया जा रहा है, इनका दिल पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी बात सुनने को नहीं दे रहे। आप कहिए, ये बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ पड़े, ख्वाह अचानक या एलानिया, तो क्या सिवाय जालिमों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? जवाब दीजिए, नहीं, जालिम ही पकड़े जाएंगे। और हम पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजते हैं कि वो बिशारत दें और डराएं, फिर जो ईमान ले आए और दुरुस्तगी कर लें, इन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और ना वो गमजदा होंगे। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं, इनको अजाब पहुंचेगा बवजह इसके कि वो नाफरमानी करते हैं। आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे कहता हूँ ये कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। खजाने को उर्दू में, फारसी में क्या कहते हैं? गंज। अभी शायद कैसा सुन लीजिए कि गंज बख्श कौन है। मैं तो ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है इसका इत्तबा करता हूँ। आप कहिए कि अंधा और बीना कहीं बराबर हो सकते हैं, सो क्या तुम गौर नहीं करते? जवाब दीजिए, अंधा और देखने वाला बराबर होता है, तो जवाब क्यों नहीं देते? दीजिए, नहीं बराबर होते। ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत है इस रुकू में, 48 अलनाम, मोमिन के लिए दोनों जहान में बेखौफी और सुकून है। लिखिए, मोमिन के लिए ये दुनिया भी, कब्र भी, हशर भी, और उसके बाद जन्नत भी टेंशन फ्री जोन है। मोमिन की दुनिया में जन्नत होती है। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की तरफ एक कौल मंसूब होता है कि जन्नत माई, मेरी जन्नत मेरे साथ है, और एक कौल है कि दुनिया की जन्नत से गुजरे बगैर आखिरत की जन्नत में नहीं कोई जाएगा। अपने दिल से पूछिए ना, मेरे पास एक ही क्राइटेरिया ना अपने हक पे या बातिल पे होने का, एम आई सेटिस्फाइड, क्या मैं कॉन्टेंट हूँ, मेरे दिल में सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस दैट्स इट। बाकी बातें अल्लाह जाने। क्या सीखा? फेथ इन एक्शन, खुशियों और गमों को आजमाइश समझना, नेमतों पे फख्र नहीं करना, और अल्लाह की पकड़ लाने वाले अमाल से बचना है। और जितना बचेंगे अल्लाह आपको उतना बचाएगा भी। कोशिश आपका जिम्मा है, बाकी काम अल्लाह के हाथ में। रुकू नंबर 6, 51 to 55, बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। बास लोग बास की आजमाइश का सबब होते हैं। वानजिर बिहिल लसीन यखाफून, क्या फरमाया? और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैर अल्लाह है ना इनका कोई मददगार होगा और ना कोई शिफात करने वाला, इस उम्मीद पर कि वो डर जाए। और इन लोगों को मत निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास इसकी रजामंदी का कसद रखते हैं। इनका हिसाब जरा भी आपसे मुतल्लिक नहीं, और आपका हिसाब जरा भी इनके मुतल्लिक नहीं कि आप इनको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। यानी दाइये दीन के हाथ में ये नहीं है कि लोगों को मजबूर करे अमल करना है कि नहीं करना, या यहाँ से तुम निकल जाओ और तुम यहाँ बैठ नहीं सकते। अल्लाह का काम है, वो जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे ना दे। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है, ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये वो लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ने फजल किया? क्या ये बात नहीं कि अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को खूब जानता है? यहाँ भी आयत आ गई है, आखिर में भी आएगी। याद रखिए, कुछ रिश्ते आजमाइश हैं, कुछ लोग निरा इम्तिहान होते हैं, कुछ लोग निरा आपका सब्र होते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि ना जा सकते, ना छोड़ सकते, ना रह सकते। वो कहते हैं ना जाए मानत ना पाए मानत, ना जाए रफ्तन ना पाए मरफ्तन, बस फिर सब्र कीजिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ साथ काम करने वाले ऐसे होते हैं। एक घर में रहकर अगर ऐसी कैफियत हो तो घर घर नहीं लगता, लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है कि सब्र करोगे तो अजर मिलेगा। और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो कह दीजिए तुम पर सलामती है, कतबर रब्बहू कतबाला नफ्सिहिर रहमा। दूसरी बार ये मौजू आ रहा, देखिएगा, कह दीजिए तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया है कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से, फिर इसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह रखे, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मगफरत वाला है, बड़ी रहमत करने वाला है। इस तरह आयात की तफसील करते रहते हैं ताकि मुजरिमीन का तरीका जाहिर करे। क्या आपको ये दुनिया अल्लाह की रहमत पे खड़ी नहीं दिख रही? हम जैसे लोगों को अल्लाह ने कुरान के लिए बिठा दिया, कभी सोचा आपने कि अल्लाह कभी ये रहमत मुझसे दूर ना करना? ईमान से मुतल्लिक एक आयत, अनाम 54, टॉपिक क्या है इसका? तौबा करने वालों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर डाल देता है। चलिए, इल्म की इस महफिल में अपने लिए दुआ करें, अपना कोई गुनाह सोचें, हाल का या माजी का, जवानी का या बुढ़ापे का, और कहें कि अल्लाह मैंने अभी अभी सुना है कि तूने अपने ऊपर रहमत लिखा है, मेरे उस गुनाह को अपनी रहमत की चादर से छुपा दे, मेरे नामे अमाल की गंदगियों को अपनी रहमत की चादर से छुपा लेना। आमीन।